ओम शांति। अभी तक आप जो सत्र सुन रहे थे वो सब आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित थे, लेकिन ये जो विषय है ये हमारे दिन प्रतिदिन की समस्याओं से संबंधित है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में हर दिन तनाव का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो तनाव एक विश्वव्यापी समस्या है और हर एक यानी बच्चा तक भी आज तनाव का अनुभव करता है। मुझे याद है हमारी जो मेडिकल विंग है वो लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए कई स्थानों पर स्वास्थ्य मेले लगाते हैं, तो ऐसे ही एक शहर में स्वास्थ्य मेला लगाया गया था और उसमें कई स्टॉल होते हैं। एक स्टॉल में ऐसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर अपनी कोई बुराई जैसे व्यसन है वो दान करें, अगर कोई सिगरेट पीता है या शराब पीता है या ऐसी ही कोई आदत है तो वो अपना दान कर सकते हैं। तो एक माता पिता अपने बच्चे के साथ वो मेला देख रहे थे और जब वो स्टॉल पर पहुंचे तो माँ को बहुत अच्छा लगा। उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम चॉकलेट बहुत खाते हो और तुम्हारे दांत सड़ रहे हैं, डॉक्टर मना करते हैं चॉकलेट नहीं खाओ, आप यहाँ अपनी चॉकलेट दान कर दो। तो बच्चा कहता है माँ मुझे सोचने दो मुझे क्या दान करना है, और फिर एक मिनट बाद बोलता है कि मैं अपनी पढ़ाई दान कर दूं, मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होता है। तो ये आज के बच्चों की स्थिति है कि इतना कंपटीशन है हर क्षेत्र में है, लेकिन पढ़ाई में भी इतना कंपटीशन है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी उस पढ़ाई के तनाव का अनुभव करते हैं जो उनके खेलने की मौज करने की उम्र होती है उस उम्र में भी। तो कहा जो 19वीं सदी थी वो आविष्कारों की सदी थी, विज्ञान ने बहुत नए नए आविष्कार किए और हम सबको सुख सुविधा के इतने अच्छे अच्छे साधन मिले। तो जो 20वीं सदी आई वो वास्तव में सुख की सदी होनी चाहिए थी, क्योंकि विज्ञान ने जो साधन बनाए वो तो सुख देने के लिए बनाए, लेकिन उस 20वीं सदी को कहा गया एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव का युग। और अभी हम 21वीं सदी में हैं तो मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हमारी यही जीवन शैली रही तो ये 21वीं सदी कौन सी सदी होगी, एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन हो जाएगी। तनाव के कारण डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज अकेले भारत में 2 करोड़ लोग डिप्रेशन की दवाइयां लेकर जीते हैं। पूरे विश्व की बात तो अलग है, केवल भारत का जो स्टैटिस्टिक्स है वो इस प्रकार का है। तो इसीलिए 20वीं सदी में जो तनाव बढ़ा उसका कारण था बहुत तीव्र गति से समाज में सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। हम देखते हैं पिछले 50 सालों में जो परिवर्तन इस विश्व में हुए हैं वो पिछले 500 साल में भी नहीं हुए, और जब समय की गति इतनी तीव्र होती है तो हमें भी समय के साथ चलना पड़ता है, और समय के साथ चलने के कारण उस तीव्र गति के कारण जो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हुई है उसने तनाव को जन्म दिया। और इसीलिए 20वीं सदी में बहुत अध्ययन किए गए तनाव के ऊपर, साइंटिस्ट हेंसले ने इसके ऊपर काफी कार्य किया और उन्होंने तनाव को परिभाषित किया स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स अपॉन कोपिंग एबिलिटी, यानी तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज्यादा हैं और उसकी तुलना में जो हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए, जो हमारी शक्ति होनी चाहिए या कोपिंग एबिलिटी होनी चाहिए, अगर वो कम है तो जो हम महसूस करते हैं वो तनाव है। इट्स अ फीलिंग और इट्स ए फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज। ये एक प्रकार का दर्द है जो मुझे ये महसूस कराता है कि मुझे कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है, और वो दर्द मुझे ये भी संदेश देता है कि इस परिवर्तन को लाने के लिए मुझे कुछ नया सीखना होगा। और हम देखते हैं प्रेशर्स आज चारों तरफ से हमारे ऊपर आते हैं, हमारे भूतकाल में कई घटनाएं जीवन में घटी होती हैं जिनकी स्मृति हमें बार बार आती है, खासकर जहां हम हर्ट हुए होते हैं, जहां हमने दुख महसूस किया होता है इसने ऐसा किया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा कहा, वैसा कहा, तो वर्तमान में भी उसका तनाव और दुख अनुभव होता है। कुछ लोगों को भविष्य की बहुत चिंता या भय या अनसर्टेनिटी होती है, उसकी वजह से वो वर्तमान में तनाव महसूस करते हैं और वर्तमान की अपनी समस्याएं होती हैं और इस तरह से चारों तरफ से वो प्रेशर्स होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जो हानिकारक हैं। ये एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स कहलाते हैं और ये हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को उत्तेजित कर देते हैं। अगर लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहती है तो फिर शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं जिन्हें मनोकायिक रोग कहते हैं, और आज 70% बीमारियां साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं। आप देख रहे हैं यहां पूरी लिस्ट। येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है जहां पर विद्यार्थियों के ऊपर एक प्रयोग किया गया। ये एक अध्ययन था कि तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने उनके व्यक्तित्व के अनुसार उन विद्यार्थियों को दो ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया जो जल्दी तनाव में आ जाते थे या जल्दी गुस्सा करते थे, धैर्य नहीं रख सकते थे। दूसरे ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया जो शांत स्वभाव के थे, धैर्य रख सकते थे, अपने मन को स्थिर रख सकते थे, और सभी के स्वास्थ्य की जांच की तो देखा उस उम्र में सभी का स्वास्थ्य सामान्य था। लेकिन स्टडी थी इसलिए हर 10 साल में उन दोनों ग्रुप को स्वास्थ्य की जांच के लिए बुलाया जाता था। तो ये देखा गया कि 50 वर्ष तक की उम्र तक आते आते दोनों ग्रुप में काफी अंतर आ गया। जो पहला ग्रुप था उसमें दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना ज्यादा साइकोसोमेटिक बीमारियां हो चुकी थी और उनके मृत्यु की संभावना भी इतनी ही ज्यादा थी। यानी दूसरे ग्रुप में अगर 5 लोग बीमार थे तो पहले ग्रुप में 25 लोग बीमार हो चुके थे। तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और यही कारण है कि हमें अपने तनाव को कम करने का या उसे प्रबंधन करने का उपाय करना चाहिए। आप देख रहे हैं जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो ज्यादा असर हमारे हृदय पर आता है। दिल की धड़कन बढ़ती है क्योंकि एड्रेनलिन बनता है और उस एड्रेनलिन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर कॉरोनरी ब्लॉकेजेस हैं, आजकल कम आयु में ही कॉरोनरी ब्लॉकेजेस होने लगे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है और 30-40 साल की उम्र तक आते आते कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। एड्रेनलिन से वो कॉरोनरी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होती हैं और उसकी वजह से हृदय को ऑक्सीजन कम मिलती है, और ऐसी स्थिति में एंजाइना हो सकता है, यानी जो सीने का दर्द है हृदय की वजह से, या फिर कभी कभी हार्ट अटैक की स्थिति भी बन जाती है। तो ये देखा गया कि हृदय रोगों का एक बहुत बड़ा कारण तनाव है और उसके कारण कम उम्र में ही लोगों को आज हार्ट अटैक्स होने लगे हैं। और भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो आज तनाव है जो हृदय रोग बढ़ा रहा है। दूसरा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है, उसमें एसिड ज्यादा बनने लगता है, उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी, अल्सर, एब्डोमिनल पेन, डायरिया हो सकता है। नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आता है, उससे स्वेटिंग, स्टैमरिंग, हेडेक, इंसोमनिया, सिर में दर्द, नींद नहीं आना, थकान बने रहना, शरीर में, बदन में, जोड़ों में दर्द होना, और क्योंकि मस्तिष्क को भी खून की मात्रा कम पहुंचती है इससे उसको ऑक्सीजन कम मिलती है और उसकी कार्य क्षमता पर भी असर आता है। यानी एकाग्रता की शक्ति कम होगी, स्मरण शक्ति कम होगी, निर्णय शक्ति कम होगी, और अगर लंबे समय तक ये स्थिति बनती है तो फिर न्यूरोटिक साइकोटिक डिजीजेस हो सकते हैं जिसमें डिप्रेशन मुख्य है जो हमने बात की आपसे। अल्कोहलिज्म, जो लोग तनाव में होते हैं वो अपने तनाव को कम करने के लिए कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं और सबसे आसान उपाय लगता है कोई ना कोई नशा लेना। या तो वो स्मोक करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो ड्रिंक करते हैं, नहीं तो तंबाकू चबाते हैं, और उससे उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ साथ परिवार को भी तनाव पैदा होता है। तनाव कम होता है या नहीं होता वो तो बात की बात है, लेकिन उसका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है। डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, और तनाव की स्थिति में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। जो रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में होती है, जिससे वातावरण में जो भी विषाणु जीवाणु होते हैं उनका आक्रमण शरीर पर नहीं हो पाता है, वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाते, लेकिन ये इम्यूनिटी कम होते ही वो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और वो इन्फेक्शंस लगने लगते हैं। आप सभी अनुभवी हैं, हम सब तनाव का अनुभव करते हैं, तो हम आपसे थोड़ा शेयर करना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियां या ऐसी कौन सी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं जब आप तनाव महसूस करते हैं। कंपटीशन तो वो हमने बताया, लेकिन आप अपने जीवन के अनुभव से बताइए, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स हैं, या हमारी ही पर्सनालिटी में कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो हम जल्दी तनाव महसूस करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, बिजनेस अप डाउन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वर्क प्रेशर, डेडलाइंस जी, घर में सेटिंग नहीं, काम में सेटिंग नहीं, ओके, फैमिली डिस्प्यूट्स, आपसी संबंधों में अगर मनमुटाव होता है तो भी तनाव पैदा होता है, और हाँ जी थोड़ा जोर से बोलिए तो सुनाई देगा, ईगो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ओके, हाँ, और बहनों की तरफ से कोई पॉजिटिव तो बताएंगे आपको सॉल्यूशन, हाँ जिनको नहीं होता वो हाथ उठाइए, इनके लिए ताली बजा दीजिए, हाँ ऐसे, तो ये जरूर आपका इनर एफर्ट है, हाँ, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फ्री हैं, और बहनों की तरफ से, हाँ, लैक ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस, बिल्कुल, क्योंकि जब कुछ गाइडेंस होगी तभी हम स्ट्रेस फ्री हो पाएंगे, रूटीन अगर ठीक नहीं है, बच्चे जो है वो रूटीन के अनुसार नहीं चलते हैं, मदर्स के लिए तो चिल्ड्रन ही स्ट्रेस का कारण होते हैं, ज्यादातर 90% केसेस में बच्चों को लेकर वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, अच्छा हाँ, बच्चों को तो डांट भी लो, और अच्छा ठीक है, खुद ही परेशान हो जाते हैं ये भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है, क्यों डांट दिया, अच्छा अभी हम सुनेंगे इसको, एक्चुअली जो भी हम सब अपने जीवन में फेस करते हैं, आम समस्याएं हम सबके सामने जो आती हैं, उसको लेकर के भी स्टडी की गई, होम्स एंड राहे ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवन में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया और ये बताया कि जो समस्याएं या जो इवेंट्स हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, किसी भी तरह का परिवर्तन लाते हैं, वो तनाव पैदा कर सकते हैं, फिर चाहे वो खुशी की ही क्यों ना हो, उसमें भी तनाव हो सकता है। सबसे टॉप पर उन्होंने रखा, उन्होंने मार्क्स दिए, हम इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने सीक्वेंस बताया, डेथ इन द फैमिली, परिवार में अगर किसी नियर एंड डियर की मृत्यु हो जाती है और अगर वो असमय मृत्यु है, यानी एक्सीडेंटल डेथ है या अनटाइमली डेथ है, तो वो बहुत तनाव पैदा करती है। डिवोर्स एंड सेपरेशन, अगर परिवार में कोई ऐसी स्थिति से गुजरता है, पति पत्नी में अहम का टकराव होता है, वो साथ नहीं रह पाते, या कोई भी और कारण बनता है जो डिवोर्स की स्थिति आती है, वो अलग रहने लगते हैं, तो इसमें दो परिवार जो हैं वो काफी तनाव से गुजरते हैं। शादी वैसे खुशी का अवसर है, लेकिन इसमें भी तनाव हो सकता है, जैसे बताया आपको। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं कि एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा, वो 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट था और भाग्य से उनकी वो लॉटरी खुली, लेकिन समाचार उनकी पत्नी को मिला, तो पत्नी ने सोचा कि मेरे पति हार्ट पेशेंट हैं, मुझे डायरेक्ट नहीं सुनाना चाहिए, बड़ी लॉटरी है, तो मैं अपने डॉक्टर से बात करती हूँ, फैमिली डॉक्टर से। तो उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने कहा उनको मेरे पास भेज दीजिए, मैं समझा दूंगा। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनसे थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में, कुछ आसपास के समाचार के बारे में बातें की, और फिर कहा कि अगर आपको 10 लाख की लॉटरी खुले तो आप क्या करोगे। कहा डॉक्टर, अगर 10 लाख मिलेंगे तो मैं एक कार ले लूंगा, मुझे कार चाहिए। फिर डॉक्टर ने कहा, अच्छा अगर आपको 50 लाख की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे। उनको लगा डॉक्टर मजाक कर रहे हैं, तो कहा कि अच्छा 50 लाख मिलेंगे तो मुझे एक मकान लेना है, मैं एक मकान ले लूंगा। फिर कहा, अच्छा आपको 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो क्या करोगे। कहा डॉक्टर, मुझे पता है मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, लेकिन मैं इतना भाग्यवान नहीं हूं कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए। तो डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप क्या करोगे। तो वो 1 मिनट सोच के बोलते हैं कि अगर ये सच है डॉक्टर, तो मैं आधा अमाउंट आपको दे दूंगा। वो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। तो यहां भी ऐसा होता है। माता पिता जिन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है, उन्हें बहुत प्रबंध करने होते हैं, उसमें कई समस्याएं हो सकती हैं, फिर उसमें धन की समस्या, दहेज की समस्या, ससुराल वालों के व्यवहार की समस्या, नए लोग, नया वातावरण, बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी होती हैं, जो खुशी के साथ साथ तनाव भी पैदा करती हैं। मनी प्रॉब्लम्स, धन की समस्या जो आपने बताया, क्योंकि आज हम धन को शक्ति मानते हैं या धन को हम सब कुछ मानते हैं, और जो भी विज्ञान ने साधन दिए हैं, हर मनुष्य चाहता है वो सब कुछ मेरे पास हो, कम से कम समय में अधिक से अधिक हम प्राप्त करना चाहते हैं, और इसीलिए आज की जिंदगी को हम भागदौड़ की जिंदगी कहते हैं। किसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं, किसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं? हम पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। अब उल्टा है, अब कहते हैं धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, क्योंकि अगर तेजी से धन कमाना है तो थोड़ा स्वस्थ रहने की भी जरूरत है, और अगर चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। यानी धन कमाने के लिए हम ना चरित्र की, ना मूल्यों की, और उससे भी आगे संबंधों की भी हम परवाह नहीं करते। आज धन संपत्ति के बंटवारे में 19-20 भाई भाई के बीच में हो जाए तो क्या होता है? भाई भाई के बीच में दुश्मनी हो जाती है, भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, और यहां तक कि अखबारों में ऐसे समाचार भी होते हैं कि एक दो को जान तक से भी मारने लग जाते हैं, ऐसे केसेस हुए भी हैं। तो आज हम धन को इतना महत्व देते हैं, धन जरूर आवश्यक है, ऐसे नहीं कि हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। जहां संबंधों की और मूल्यों की बात आती है वहां धन का महत्व नहीं है। देखो, धन से आप दवाइयां खरीद के ला सकते हैं, स्वास्थ्य तो नहीं खरीद सकते, घड़ी खरीद सकते हैं, समय खरीद सकते हैं, किताबें खरीद सकते हैं, ज्ञान खरीद सकते हैं, हाँ एक मकान खरीद सकते हैं, लेकिन आपसी संबंधों का प्यार खरीद सकते हैं, तो उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से धन कमाते हैं, वो धन हमें जीवन में सुख देता है। जरूर कमाएं, लेकिन अगर सही तरीके से धन कमाया है तो वो शांति देता है और सुख देता है, और गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी जीवन में सुख शांति नहीं देता है। फिर बच्चों की समस्या, बच्चे अगर आज्ञाकारी नहीं हैं, गलत संग में पड़ जाते हैं, आप बहुत अपेक्षाएं रखते हैं उनसे। आजकल सभी माँ बाप अपेक्षा रखते हैं, बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हाँ कोई ऊंचा कैरियर बनाए, और अगर बच्चे आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं तो ठीक, अगर उनमें उतनी योग्यता नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों पर भी दबाव पड़ता है, और कई बार इस कारण वो गलत तरीके अपनाने लगते हैं। हमेशा ये देखा जाता है जब एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ ना कुछ समाचार ऐसे होते हैं कि बच्चों, कुछ बच्चे सुसाइड करते हैं। एक ऐसे ही एक बच्चे ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे पिता चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं तो अभी एग्जाम में फेल हो गया हूं, मुझे पता है मैं कितना भी पढ़ लूं मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपने माता पिता को निराश भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं। तो कई बार वो भावनात्मक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते, समझ नहीं पाते स्थिति को और बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे कितने योग्य हैं, किस लायक हैं, उनकी रुचि किस क्षेत्र में है, उस तरह से हम उनको प्रोत्साहन दें। और अगर ऐसे चलेंगे तो फिर वो बच्चों की समस्याएं हमें तनाव पैदा नहीं करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी कई स्थितियां उत्पन्न होती हैं क्योंकि काफी समय हम वहां व्यतीत करते हैं, 8 घंटा, उससे भी अधिक टाइम कई बार हम अपने वर्क प्लेस पर होते हैं। बीइंग फायर्ड, कोई ना कोई अधिकारी होता है हमारे ऊपर, कोई ना कोई अफसर होते हैं, बॉस होते हैं, और अगर उनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है या हम सारा दिन बहुत मेहनत करते हैं, उसकी प्रशंसा तो हमें नहीं मिलती है, लेकिन एक छोटी गलती कहीं हो गई उसके लिए उठा करके 4 लोगों के सामने अपमानित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति तनाव पैदा करती है। कंपीटिंग विद ए कलीग, साथियों में कंपटीशन रहता ही है। अगर ये कंपटीशन लिमिट तक है तो हमें प्रोग्रेस में मदद करता है, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा कंपटीशन है तो ऐसा कंपटीशन हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने लगता है। कन्फ्लिक्ट विद कलीग्स, साथियों के साथ विचार नहीं मिलते हैं, आप में से भी किसी ने शेयर किया, विचार नहीं मिलते हैं, मतभेद हैं, काम उन्हीं के साथ करना पड़ता है, फिर उनका सहयोग हमें नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति भी तनाव पैदा करती है। कई बार डिमोशन की स्थिति आती है, हम सभी चाहते प्रमोशन है, लेकिन कोई गलती या पिछला रिकॉर्ड ऐसा है कि प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाता है। तो कहते हैं लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कंफर्ट्स, क्योंकि इसमें व्यक्ति की बदनामी होती है। एक्सेसिव वर्कलोड, कार्य का बहुत दबाव है, बहुत अधिक कार्य के कारण ना हम अपने आप को समय दे पाते हैं, ना परिवार को समय दे पाते हैं, इसके कारण तनाव होता है। वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, कई बार ऐसे होता है वर्कलोड बहुत ज्यादा है लेकिन सुविधाएं नहीं है, स्टाफ कम है, अगर है तो भी उतना योग्य नहीं है, तो ये भी तनाव पैदा करता है। ट्रैफिक, पोल्यूशन, न्यू जॉब, ओवर क्वालिफाइड हैं, बहुत पढ़े लिखे लेकिन जैसा जॉब चाहते हैं वैसा जॉब नहीं मिलता है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज इवन मोर स्ट्रेसफुल देन एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी एक सर्च स्टडी में देखा गया कि 40% एम्प्लॉयज को जॉब स्ट्रेस होता है, और उनके जॉब स्ट्रेस को दूर करने के लिए अगर इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं तो फिर उनके कंपनसेशन क्लेम में 70% तक कमी आ जाती है, इतना फर्क पड़ता है उसका। तनाव के बारे में कुछ भ्रम है, भ्रम ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता हमें स्ट्रेस हो रहा है नहीं हो रहा, हमें डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ेगा तब पता चलेगा कि हम तनाव में हैं या नहीं। क्या कहेंगे, सही है गलत है? हम अपने तनाव को खुद समझ सकते हैं क्योंकि ऐसे लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं जो हमने देखे, और दूसरा असर हमारे मन पर आता है, मन अशांत हो जाता है, हम दबाव महसूस करते हैं और एक अनइजीनेस हम फील करते हैं तनाव की स्थिति में। इसीलिए स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल, कई बार हम समझते हैं मॉडर्न डे लिविंग है इसमें तनाव नहीं हो ये असंभव है, तो हमने तनाव को जैसे स्वीकार कर लिया है। जैसे कोई व्यक्ति को कोई रोग होता है, लंबे समय से वो रोग चला आ रहा है, तो सोचते हैं इस रोग के साथ ही मुझे जीना है, तो उस रोग को हम स्वीकार कर लेते हैं, पर रोग होना इट्स नॉट नॉर्मल, नॉर्मल इज हेल्दी रहना। ऐसे ही तनाव होना ये नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, और इसीलिए हमें अपने उस तनाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एंड सम स्ट्रेस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू रीच पीक परफॉर्मेंस, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यदि हमें पीक परफॉर्मेंस देनी है, सक्सेसफुल होना है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है, तो बिना तनाव के तो ये संभव नहीं है, कुछ ना कुछ तो तनाव होगा। क्या कहेंगे, जरूरी है, बिना तनाव के सफलता नहीं हो सकती? जो समझते हैं ये सही है वो हाथ उठाएं। कोई नहीं हाथ उठा रहे हैं, शायद ज्ञान सरोवर में बैठे हैं इसलिए। हाँ, टेंशन में और काम बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है कि स्ट्रेस में हम अच्छा काम करते हैं, पर वास्तव में होता इसका उल्टा है। आप देख रहे हैं यहाँ ग्राफ में, जब हम तनाव में होते हैं तो शुरू में हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है जरूर, क्योंकि कैटाकोलामिन्स बनते हैं, उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद शरीर में स्टेरॉइड्स बनते हैं जो हमें थकाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो सफलता हमें मिलती है वो हमारे शरीर की कीमत पर हमें मिलती है। लोग 40 साल की उम्र तक जो पाना चाहते हैं, नाम, पद, धन, वो पा लेते हैं, लेकिन हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं तो पता चलता है हार्ट की बीमारी हो गई है, या ब्लड प्रेशर हो गया है, या डायबिटीज हो गई है। और ये सब बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, ये सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल होती हैं, और एक बार होने के बाद जीवन भर इन बीमारियों के साथ जीना होता है। तो 40 साल आपने कमाया और अगले जितने भी साल आप जीने वाले हैं क्या करेंगे, स्वस्थ रहने के लिए खर्च करते रहेंगे। तो हमारा शरीर ये अंतर नहीं कर पाता है कि आप सफलता के लिए तनाव में हैं या किसी और कारण से तनाव में हैं। लेकिन यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से, उमंग से, शांति से भी काम करते हैं तो भी जीवन में सफल होते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं सफलता मिलती है, लेकिन तनाव के कारण हमारे शरीर को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर ये भी देखा गया है कि हम अपने तनाव के लिए या तो परिस्थितियों को या व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे एक सास, उसको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, तो उसको पूछा गया आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो उसने क्या कहा होगा, कुछ बहनें हंस रही तो समझ गए, मेरी बहू के कारण, मैं जैसा चाहती हूँ ये वैसा नहीं करती है, इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्योंकि गुस्सा करते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। ऐसे ही वो बहू को सिर दर्द रहता था, उसकी जो बहू थी उसको पूछा आपको सिर दर्द क्यों हो जाता है, तो उसने कहा मेरी सास मुझे हर काम में टोकती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसीलिए मुझे सिर दर्द हो जाता है। वर्क प्लेस पर मैनेजमेंट को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजकल वर्कर्स काम ही कहाँ करते हैं, और अगर काम के लिए कहो तो उनकी मांगे होती हैं, है ना, उनकी मांगे इतनी ज्यादा होती हैं कि अगर उसे पूरा नहीं करो तो यूनियन बनाते हैं, हड़ताल करते हैं, आजकल लोगों से काम कराना कितना सिर दर्द है। हाँ, फिर वर्कर से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट के कारण हमें तनाव होता है, हमसे काम तो बहुत लेते हैं लेकिन जो सुविधाएं, जो वेतन हमें देना चाहिए वो नहीं देते हैं। माता पिता को पूछा गया तो उन्होंने कहा बच्चों के कारण, हाँ, और बच्चों से पूछेंगे तो किसके कारण, माँ बाप के कारण, तो सबकी उंगली किसकी और है, दूसरों की और। अगर एक उंगली दूसरों की और है तो तीन उंगली कहाँ है, अगर एक कमी सामने वाले में है तो पहले तीन कमी किसमें है, किसको बदलना चाहिए पहले। हम क्या सोचते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है, इसको बदल जाना चाहिए। बहू हमेशा सोचेगी मेरे सास को बदलना चाहिए, उसे समझना चाहिए आज के जमाने को। हाँ, सास क्या सोचेगी, मैं अनुभवी हूँ, मेरी बहू को मेरे अनुसार ही चलना चाहिए, इस घर में मैं इतने सालों से रहती हूँ। और वर्क प्लेस पर बॉस क्या सोचेंगे, वर्कर्स, हाँ मैं बॉस हूँ तो वर्कर्स को तो मेरी बात माननी ही चाहिए। वर्कर्स क्या सोचेंगे, बॉस को ये समझना चाहिए। हमेशा हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है सेल्फ चेंज लीड्स टू वर्ल्ड चेंज। हम बदलेंगे तो दूसरे बदलेंगे, हम बदलेंगे तो उन्हें परिवर्तन की प्रेरणा मिलेगी, नहीं तो ना वो बदलते हैं ना हम बदलते हैं, हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, हमारा तनाव बढ़ता जाता है। एक बार एक शहर में एक हस्बैंड वाइफ ट्रांसफर होके गए, तो वहां उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया रहने के लिए। आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं और वो अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं आमने सामने, तो उनकी जो फ्लैट थी वो इसी तरह का था कि सामने ही दूसरे की बालकनी थी। तो वो एक दिन बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे तो सामने वाली जो फ्लैट की लेडी थी वो कपड़े सुखा रही थी, तो इस बहन ने देखा तो उसको लगा कपड़े ठीक से नहीं धुले हुए हैं, तो उसने कमेंट किया कि देखो इसको लगता है कपड़े भी नहीं धोने आते, कैसे कपड़े धोए हैं। हाँ, ऐसे आदत होती है दूसरों को देख करके कुछ कहने की। फिर दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, जब वो चाय पी रहे थे तो वो शायद उसके कपड़े धोने का टाइम होता था, वो फिर कपड़े सुखा रही थी, तो देखा आज भी कपड़े ठीक नहीं धुले हुए हैं, तो उसने अपने हस्बैंड को कहा लगता है इसके पास अच्छी क्वालिटी का सर्फ ही नहीं है। फिर तीसरे दिन भी जब उसने कपड़े सुखाए तो आज साफ धुले हुए थे, तो उसने वो भी कहा कि आज तो इसके कपड़े बहुत साफ धुले हुए लग रहे हैं। तो पति ने कहा कि मैंने आज बालकनी का शीशा साफ कर दिया है। तो हम हमेशा दूसरों को देखते हैं और कई बार वो वास्तव में कमी हमारे यहाँ ही होती है। यू हैव टू बी वर्किंग 14 आवर्स अ डे, कॉन्स्टेंटली मीटिंग डेडलाइंस इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। हाँ, आप में से भी किसी ने कहा डेडलाइंस की बात को, हम बहुत कार्य करते हैं इसलिए हमें तनाव होता है। वास्तव में काम से व्यक्ति को तनाव नहीं होता, लेकिन हमारे काम के प्रति जो भावना है वो ज्यादा महत्व रखती है। अगर हम अपने काम को पसंद करते हैं, मन से करते हैं, रुचि से करते हैं, वो काम हमें खुशी देता है। लेकिन जिस काम को हम पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी से करते हैं, हमसे कराया जाता है, वो काम हमें थोड़े समय में ही तनाव पैदा करने लगता है। तो पहले तो हम चेक करें कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे पसंद का है। अगर हम उसे चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर दें, पर हमेशा ये संभव नहीं होता है। अगर हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो फिर देन लर्न टू लव योर वर्क। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको प्रेम से करें, उसे पसंद करें और प्रेम से उस काम को करें। लेकिन फिर भी अगर वर्क ओवरलोड ज्यादा है तो हम टाइम मैनेजमेंट यूज करें, जो मोस्ट अर्जेंट इम्पॉर्टेंट टास्क है उसे हम पहले पूरा करें, जो लेस इम्पॉर्टेंट है उन्हें बाद में लें, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हें हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। और इसमें हम वर्क डेलीगेशन भी यूज कर सकते हैं कि दूसरों को हम थोड़ा काम बांटें, उनका सहयोग लें, जिनसे भी हम सहयोग ले सकते हैं और समय पर काम को पूरा कर पाएं। लेकिन जहां डेडलाइंस की बात आती है वहां कॉरपोरेट्स क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, वो कम समय में ज्यादा काम करवाने के लिए एम्प्लॉयज को डेडलाइंस देते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जब थोड़ा प्रेशर डाला जाता है तो सचमुच काम ज्यादा होता भी है। अगर प्रेशर नहीं होता है तो थोड़ा केयरलेसनेस होती है। एक बार एक ऐसे ही बिजनेसमैन को अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो उसने, इकलौती बेटी थी उसकी और जो भी उसका दामाद होने वाला था उसको पूरा बिजनेस संभालना था, तो उसने सोचा कि मेरे दामाद में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उस अनुसार उसने एक एडवर्टाइजमेंट दिया और उसने कहा कि जो मेरे बंगले के बाहर बना हुआ स्विमिंग पूल उसको एक कोने से दूसरे कोने तक पार कर लेगा, उसके साथ मेरी बेटी की शादी होगी, उसे इनाम भी मिलेगा और फिर मेरा बिजनेस भी वही संभालेगा। तो ये तो बहुत सिंपल था, स्विमिंग पूल पार करना कौन सा मुश्किल काम है। तो बहुत सारे युवक जो हैं वो वहां इकट्ठे हो गए, तो देखा कि स्विमिंग पूल में तो बहुत सांप है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें कूदने की, क्योंकि पूरा स्विमिंग पूल सांपों से भरा हुआ था, कौन अपनी जान को। तो इतने में देखा कि एक तरफ से एक कूदा और बहुत मुश्किल से सांपों से किसी तरह बचते हुए दूसरे किनारे पर बाहर आ गया। तो वो लड़की के पिताजी वहीं खड़े हुए थे और बिजनेसमैन जो था उसने उसकी पीठ थपथपाई, उसको शाबाशी दी, उसने कहा मुझे ऐसे ही करेजियस लड़का चाहिए था और तुमने वो काम करके दिखाया है और जो मेरी शर्तें हैं वो सब मैं तुमको दूंगा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपका बिजनेस चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, ना मुझे शादी करनी है, मुझे उसको ढूंढने दो जिसने मुझे इस पूल में धक्का दिया है। तो वो काम वो प्रेशर से कर पाए, एक पुश मिला तो कर पाए, अगर पुश नहीं मिलता तो वो स्विमिंग पूल पार नहीं कर सकता है। तो कई बार काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पुश, मतलब जो चैलेंजिंग जॉब्स होते हैं उसमें कई बार इस तरह का, लेकिन जरूरी नहीं है हम उसे तनाव से करें। हम वही काम जो है वो मन की अच्छी स्थिति से भी उतने ही समय में कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन जो है वो हमें एक पुश देती है कि इतने समय में ये काम हमें पूरा करना है। चेंज ऑफ डाइट, जॉगिंग क्लब्स, हाँ हम क्या करते हैं अपने तनाव को कम करने के लिए, हाँ ये भी एक इल्यूजन है। अब मुझे तनाव हो रहा है तो हम मनोरंजन के साधन ढूंढेंगे, कैसे मेरा मन रिलैक्स हो जाए, मन पीसफुल हो जाए, तो हम सोचते हैं रेस्टोरेंट में जाकर खा लेते हैं आज रात को, हाँ थोड़ा तनाव कम हो जाएगा, या किसी हॉलीडे पर चले जाते हैं या पार्टीज में चले जाते हैं। और भी तरीके अपनाते हैं, कुछ लोग सिनेमा देखते हैं, कुछ लोग व्यसन लेते हैं जो बताया आपको, कुछ ड्रग्स भी लेते हैं, कुछ जिम में जाते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका है, आप भी कोई कोई तरीके अपनाते होंगे, लेकिन ये सब तरीके हमारे तनाव को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। जब तक हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तब तक हमें लगता है हमारा तनाव बिल्कुल दूर हो गया है, बिल्कुल रिलैक्स है, लेकिन जैसे ही मनोरंजन समाप्त होता है हम पुनः अपनी स्थिति में आते हैं, फिर से वो समस्या हमारे सामने होती है और फिर तनाव शुरू हो जाता है। मीन्स दीज आर नॉट द रियल रेमेडीज फॉर स्ट्रेस, ये सिर्फ हमारे तनाव को पोस्टपोन करते हैं। तो फिर रियल रेमेडी कहाँ है? हमें तनाव की जड़ को समझना पड़ेगा, कहाँ से शुरू होता है तनाव? हमारे मन से शुरू होता है। ज्यादातर जो भी तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां हैं वो हमारे मन में नेगेटिव विचार पैदा करती हैं। यानी उस स्थिति में हम ये ज्यादा सोचते हैं इसमें मेरा बुरा क्या हो सकता है, इसमें मेरी हानि क्या हो सकती है, यानी हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। और जैसे ही हम नेगेटिव सोचते हैं हमारी फीलिंग्स भी नेगेटिव होती है, उसके कारण हमारे व्यवहार पर असर आता है। लेकिन हम उसी परिस्थिति में पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, हमारी चॉइस है। किसी भी परिस्थिति में अच्छा सोचना या बुरा सोचना ये हमारी चॉइस है या नहीं है? हम उसी परिस्थिति में अच्छा भी सोच सकते हैं, भले है बुरी परिस्थिति, लेकिन अच्छा सोचा जा सकता है या नहीं सोचा जा सकता है ना? हो सकता है थोड़ा हमें ज्यादा अभ्यास करना पड़े, क्योंकि हमने सुबह भी बात की थी मन सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म मन को, जैसे इस हाथ को ऊपर नीचे करना ये बहुत आसान है क्योंकि ये फिजिकल है, इसको ऊपर नीचे करने में ज्यादा मेहनत नहीं है, मेरी इच्छा अनुसार जब चाहे हम कर सकते हैं। लेकिन मन को मेरी इच्छा अनुसार चलाना, उसके लिए हमें थोड़ा अभ्यास देना पड़ता है। मानो आपके घर में मेहमान आते हैं और आप अपने बच्चों, आप बच्चे, सर्वेंट, बहू, जो भी है घर में, आप उसको कहते हैं चाय नाश्ता ले आओ इनके लिए ना, और वो लेकर आते हैं और किसी भी कारण से नजदीक आते ही वो सारी ट्रे गिर जाती है, चाय भी गिर जाती है, पूरा नाश्ता भी गिर जाता है, कपड़े खराब होते हैं। अब हम दो तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव हैं हम गुस्सा करेंगे, मेहमान भी टेंशन में, वातावरण में टेंशन, काम करने वाले को भी भय होगा। लेकिन हम शांत भी रह सकते हैं, अब परिस्थिति तो उत्पन्न हुई है, जो भी है उसका समाधान तो करना है, तो हम उसको कहें कि ठीक है जो हुआ वो हुआ, आगे से ध्यान रखना, और हम उसको कहें हम दूसरी चाय बना लेंगे और ही उसको मदद करने लगे जो भी गिरा है उसको समेटने में। तो परिस्थिति उत्पन्न हुई लेकिन तनाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स, हमारा सोचने का तरीका अलग है। तो ये डिपेंड करता है, सारे दिन में ऐसी कितनी ही स्थितियां आती हैं, छोटी छोटी बातें आती हैं हमारे व्यवहार में, लेकिन हमारा उसको देखने का नजरिया कैसा है, वैसे ही हम तनाव उत्पन्न करते हैं या फिर हम उसे सहज रूप से पार कर जाते हैं। ऐसे ही एक बार एक शहर में दो भाई थे, दोनों की स्थिति में बहुत अंतर था, एक अमीर था दूसरा गरीब था, उनके बच्चे थे। तो जो गरीब भाई था उसके तीन बच्चे थे और वो देखते थे अपने अंकल के बच्चों को कि वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अभाव है। तो वो अलग अलग तरह से सोचते थे। जो बड़ा बेटा था वो सोचता था हमारे माता पिता इतने सक्षम नहीं है, हमारी ठीक से पालना नहीं कर सकते, तो उन्होंने जन्म ही क्यों दिया है ना, तो वो हमेशा माँ बाप को दोष देता था। जो दूसरा था उसके अंदर हीन भावना रहती थी कि मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ और हमारे पास सब कुछ सुविधाएं नहीं है। लेकिन जो तीसरा था वो सोचता था कि मेरे पिता गरीब हैं तो क्या हुआ, मुझे कुछ करना चाहिए। उस उम्र में उसको इतना ही समझ में आया कि मैं अच्छी तरह पढ़ूं, कोई ऊंचा पद प्राप्त करूं, तो मैं अपने पिता को भी मदद करूंगा और हम गरीबी से बाहर आ जाएंगे। तो उसने पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया, हालांकि वो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाने के कारण वो एक अच्छा डॉक्टर बना, एक सर्जन बना, और एक बार एक कॉन्फ्रेंस में उसके काम के लिए उसको अवार्ड मिला और उसको अनुभव पूछा गया। तो उसने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं उसका कारण कि मेरे पिता गरीब थे, और जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ उस दिन मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया। हालांकि मैं बहुत होशियार स्टूडेंट नहीं था, लेकिन इस परिस्थिति ने मुझे यहां तक पहुंचाया। तो देखने में तीनों के सामने एक ही जैसी परिस्थिति थी, गरीबी की परिस्थिति तीनों बच्चों के सामने समान थी, लेकिन तीनों का सोचने का तरीका उसके प्रति बिल्कुल अलग अलग, इसलिए तीनों का जीवन बिल्कुल अलग दिशा में गया। तो ऐसे ही होता है, हम सबके सामने भी एक जैसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हम सब उसे अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई उन्हीं परिस्थितियों में बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई उन्हीं को चैलेंजेस की तरह लेते हैं और वही उनको आगे बढ़ाने का साधन बन जाती हैं, वही उन्हें महान बना देती हैं, ऊंचा उठा देती हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं, वही हमारे महसूसता का आधार होता है। हमने आपको बताया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स अपॉन कोपिंग एबिलिटी। तो यदि हम अपने तनाव को कम करना चाहते हैं तो या तो हम प्रेशर्स को कम करें और या फिर अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाएं। प्रेशर्स को हम कम कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे पूछकर नहीं आती हैं और वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जीवन बहुत शांति से बीत रही है, पता नहीं कहां से कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि बिल्कुल ही स्थिति बदल जाती है। तो उसके प्रति कोपिंग एबिलिटी हम जरूर बढ़ा सकते हैं और वो कोपिंग एबिलिटी इनर स्ट्रेंथ है, अंदर की शक्ति है, वो हमें बाहर से नहीं आती है। तो आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए योग एक बहुत अच्छा साधन है। ध्यान करना और स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने जीवन में यूज करना, आप में से भी किसी ने शेयर किया कि यदि हम जीवन की परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं, अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, तो फिर हमारे लिए तनाव कम करना बहुत सहज हो जाता है। आप मेडिटेशन तो सीख रहे हैं यहाँ पर और आपने समझा भी है। योग में दो चरण मुख्य रूप से हैं, एक आत्मचिंतन है, आपको सुबह भी कराया गया। आत्मचिंतन में हम आत्मा के गुणों का अनुभव करते हैं और जब हम उन गुणों का अनुभव करते हैं तो हमें अपनी कमी समझ में आने लगती है। मेरी समस्या कहाँ है वो समझते ही हमारा आधा तनाव वहीं कम हो जाता है। फिर दूसरे चरण में हम भगवान से संबंध का अनुभव करते हैं, जो शांति के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, और वो शक्ति जब मुझे अनुभव होती है तो मेरा मनोबल बढ़ता है। और जब ईश्वर के साथ का अनुभव होता है तो बड़ी बात भी हमें छोटी लगती है। इसलिए हम देखते हैं इस संसार में जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष हुए, चाहे वो क्राइस्ट हुए, महात्मा बुद्ध हुए, गुरु नानक हुए, या इस युग में महात्मा गांधी या मदर टेरेसा हुए, उनके सामने कैसी कैसी परिस्थितियां नहीं आई होंगी। जैसे हम सिखों के गुरु की भी बात देखें, कितनी कठिनाइयों को उन्होंने जीवन में सामना किया, लेकिन हंसते हंसते मन पर उसका कोई असर नहीं आया, क्योंकि वो आध्यात्मिक बल, वो ईश्वर का साथ अपने जीवन में वो सदा अनुभव करते थे और इसीलिए सहज रूप से उन स्थितियों को उन्होंने पार किया। तो उनके आगे तो हमारे जीवन की परिस्थितियां कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे घर संसार की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। और ये भी देखा गया कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी में भी चेंजेस आते हैं। 25 साइंटिफिक स्टडीज में ये देखा गया कि जब हम योग करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम रिलैक्स होता है। जैसे तनाव की स्थिति में हमारा पूरा सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, ऐसे ही योग की स्थिति में शांत हो जाता है, क्योंकि एड्रेनलिन की बजाय एंडोर्फिन्स, एनसेफलिन्स और सेरोटोनिन्स ये केमिकल्स बनते हैं। उससे हार्ट रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब कम होता है और हमारे पूरे सिस्टम एक बैलेंस में काम करने लगते हैं और हम तन से भी स्वस्थ होते हैं। तनाव हमारे तन को अस्वस्थ बनाता है और योग हमारे तन को स्वस्थ बनाता है, इसलिए योग लोकप्रिय हो रहा है आज, मुख्य रूप से स्वास्थ्य के कारण, क्योंकि योग से हम तन और मन दोनों तरह से स्वस्थ बनते हैं। पहले मन स्वस्थ होता है और फिर उसका प्रभाव हमारे तन पर आता है, फिर हमारा चाहे व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है या कार्य क्षेत्र का जीवन है, ये तीन बातें हमारे सामने आती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप्स। हम सभी एक दिनचर्या में होते हैं, कोई ना कोई रोल्स यानी हम कार्य करते हैं और उस कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। अगर ऑफिस में काम करते हैं, अफसर हैं, सारा दिन लोगों से काम कराते हैं, हम ऑफिशियल बने रहते हैं ना? लेकिन जब घर आते हैं तो अब अफसर नहीं है, रोल चेंज हो जाता है। घर में आप पिता हैं, पति हैं या पुत्र हैं, और परिवार के लोग क्या चाहते हैं, अपनापन, स्नेह चाहते हैं। लेकिन अगर हम उसी रोल में बने रहते हैं जो रोल हमने 8 घंटे प्ले किया, तो परिवार वाले संतुष्ट होंगे नहीं। तो वो जो तनाव ऑफिस का था वो हम घर ले आए और उसका असर हमारे परिवार पर पड़ता है। ऐसे ही कुछ लोग परिवार का जो टेंशन है वो ऑफिस में ले जाते हैं, जहां जैसा रोल है वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। मानो अफसर नहीं है, वर्कर हैं, काम करते हैं और बहुत लोगों का उसके कारण सुनना पड़ता है। मानो काम के समय कई बार गुस्सा भी आता है लेकिन कह तो नहीं सकते हैं, गुस्से को पीते हैं। फिर घर जाते हैं तो अंदर वो गुस्सा भरा हुआ होता है और बात बात में चिढ़कर बात करते हैं, है ना, शांति से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो गुस्सा अंदर भरा हुआ है। तो उसका भी प्रभाव परिवार पर आ गया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं वो हम नहीं है। वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन हम समझने लगे हैं ह्यूमन डूइंग्स, यानी हम जो करते हैं वही हम हैं, वही हमारी आइडेंटिटी है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस है। लेकिन हम आत्मा है और संसार में हमें ये कर्म करने के लिए ये रोल मिला है। तो जब हम ऐसा समझ करके अपना कार्य करते हैं तो उस रोल से डिटैच होना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है, और फिर जहां हमारा जो जैसा रोल है उसे हम प्ले कर पाते हैं। एक बार एक स्थान पर रामलीला चल रही थी और वहां हनुमान का रोल प्ले करने वाला नहीं पहुंचा था। तो काफी गैदरिंग हो चुकी थी, तो उसने जब देखा तो उसने कहा कि मुझे शुरू करवा देना चाहिए, नहीं तो अव्यवस्था हो सकती है। तो उसने एक वर्कर को बुलाया और कहा कि देखो, हनुमान का रोल प्ले करने वाला नहीं आया है, पहला जो दृश्य है वो बहुत आसान है, तुम हनुमान का ड्रेस पहन करके आओ स्टेज पर, और तुम्हें एक दृश्य करना है कि रावण की दरबार लगी हुई है और वो तुमसे सवाल करेगा तुम कौन, तो आप जवाब देना मैं श्री राम भक्त हनुमान। उसने कहा ठीक है। वो ड्रेस पहन करके आया स्टेज पर, लेकिन पहले उसने कभी एक्टिंग नहीं की थी, तो उसने सभा को देखा और फिर रावण तो कितना जोर से बोलता है, उसका रोल ही होता है, उसने जोर से उसके ऊपर चिल्लाया तुम कौन, तो बेचारा भूल गया और उसने कहा मैं श्यामलाल रिक्शा वाला। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो जैसा रोल हमें प्ले करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते हैं। फिर तीसरी बात है संबंध। हम सभी संबंधों में रहते हैं, चाहे फिर फैमिली में है चाहे वर्क प्लेस में है, संबंध तो होते ही हैं। और अगर संबंध अच्छे हैं तो वो हमारे तनाव को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि संबंधों में हम अपने सुख दुख की बातें शेयर कर लेते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए कहते हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है और सुख बांटने से दुगना हो जाता है। और कई बार ये देखा गया कि जो लोग जानवरों से भी ना, पेट्स से भी बातें करते हैं, उसमें भी अंतर आता है। विदेशों में स्टडी की गई, वहां पर लोग बहुत पेट्स रखते हैं, 90% घरों में वहां पेट्स होते हैं, या तो कुत्ता होता है यानी तो बिल्ली, किसी ना किसी को तो पालते हैं वो। भारत में इतना रिवाज नहीं है, कोई कोई शौकिया संपन्न घरों में कोई पेट्स रखते हैं। तो वहां ये देखा गया कि जो अपने पेट से बातें करते हैं उनको हार्ट की बीमारी बहुत कम होती है। तो फिर एक स्टडी की कि ऐसा क्यों है, उनसे ये भी पूछा गया कि आप पेट से क्यों बातें करते हैं, आपके घर में आपके पत्नी हैं, बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे क्यों नहीं बातें करते हैं, अपने पेट से बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पेट्स हैं वो चुपचाप सुनते हैं, उनका नहीं हमें सुनना पड़ता। अगर हम किसी इंसान से बात करते हैं तो उसका भी सुनना पड़ता है, हम सिर्फ सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, इसलिए हम पेट से बातें करते हैं। लेकिन फिर भी उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए कि अगर पेट को भी सुना करके उन्होंने अपने मन को हल्का किया तो उसके भी सकारात्मक परिणाम आए। तो चलो हम इंडिया में तो पेट्स नहीं रखते हैं, लेकिन हम भगवान से तो बातें कर सकते हैं। मेडिटेशन में हम भगवान से अपने समस्याएं या जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी हमारे भय हैं, हम भगवान को दे दें, उसे सौंप दें। हाँ, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, ऐसे कहते हैं ना। अगर हमने दिल से उसको सौंप दिया तो सचमुच आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, और ईश्वर से तो हमें शक्ति भी मिलेगी। पेट से तो क्या शक्ति मिलती होगी, हाँ, लेकिन भगवान तो हमें वो शक्ति भी देते हैं, मार्गदर्शन भी मिलता है। तो सब कुछ मिल सकता है ईश्वर से तो। लेकिन फिर भी संबंधों में कुछ नेगेटिविटीज जो आती हैं, उसमें है एक्सपेक्टेशंस, अजम्पशंस, जेलेसी, हेट्रेड, एंगर, क्रिटिसिज्म, ईगो, कहीं ना कहीं ये नकारात्मक भावनाएं हमारे संबंधों में उत्पन्न होती रहती हैं। हम बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, खासकर समीप संबंधों में। पति है वो सोचेंगे मेरी पत्नी है, इसे मेरे लिए सब कुछ करना ही चाहिए, किया तो ठीक और नहीं किया तो नाराज। पत्नी सोचती है मेरे पति हैं, इनकी ये जिम्मेवारी है। या बच्चों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे हमने बात की, और अगर वो अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं होती तो हम सदा ही तनाव में रहते हैं। ज्यादा तनाव समीप संबंधों में होता है, ज्यादा सुख भी समीप संबंधों में होता है तो ज्यादा तनाव भी समीप संबंधों में होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हम जो भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो कर्तव्यों का पालन हम निष्काम भाव से करें। जितना हम निष्काम भाव से देने की भावना से करेंगे, हम सोचते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया लेकिन आज समय है इसको मेरे लिए करने का, लेकिन नहीं कर रहे हैं। एक भाई थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और जब वो डॉक्टर के पास दोबारा गए तो डॉक्टर ने कहा आप चिंता नहीं करो, ज्यादा मत सोचो, अगर आप चिंता करोगे तो आपको दोबारा हार्ट अटैक हो जाएगा और वो बहुत रिस्की हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुझे पता है कि मुझे हार्ट अटैक क्यों हुआ, मेरे बचपन में माता पिता उनका देहांत हुआ, मेरे भाई बहनों को मैंने पाला, आज वो सब इतने लायक हैं, सक्षम हैं, अब मुझे उनके सहयोग की जरूरत है, लेकिन वो मुझे सहयोग देना तो दूर, मेरा एहसान भी नहीं मानते कि मैंने उनके लिए कुछ किया, और मुझे इतना दुख होता है ना। सोच किसका चलता है कि आज मेरी स्थिति क्या है इनके कारण, तो अब उनको बदल सकते हैं। दूसरों को बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने को बदलना हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, उस समय उनका फर्ज था, उन्होंने वो फर्ज निभाया, वो श्रेष्ठ कर्म किया, वो श्रेष्ठ कर्म का फल उनके साथ है ही। लेकिन अब अगर ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, माना अगर रिटर्न मिलता है तो भी बहुत अच्छा, और नहीं मिलता है तो और भी ज्यादा अच्छा। स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि इस तरह से यदि हम जीवन में संबंधों में चलते हैं तो हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, कि दूसरों को हमें देना है, उनसे अपेक्षा नहीं रखनी है। फिर जहां तक जेलसी, हेट्रेड, एंगर की बात है, हम देखते हैं हमारे साथी हैं इतनी उन्नति कर रहे हैं, अच्छे स्थिति में हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं तो ईर्ष्या पैदा होने लगती है। ईर्ष्या माना मन ही मन हमें पसंद नहीं आता है कि वो ज्यादा खुश हैं या ज्यादा सुखी हैं। कहते हैं आज तीन तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक हैं जो दूसरों के दुख से दुखी हैं, दूसरे होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर सुखी हैं, और तीसरे होते हैं जो दूसरों को सुखी देखकर दुखी हैं। तो ईर्ष्या हम किसको कहेंगे, जो दूसरों को सुखी देखकर दुखी हैं। तो हमें अपने को चेक करना चाहिए कि कहीं ये स्थिति हमारी तो नहीं है, और अगर है तो ये हमें ही नुकसान पहुंचा रही है। चिंता चिता के समान है, तो ईर्ष्या भी अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है, और उसका सबसे बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर होता है। हमें उन्नति करनी है, हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, अपने गुणों को बढ़ाएं, हम भी उन्नति करेंगे। लेकिन दूसरों से तुलना करने से, हरेक के कर्म और प्रारब्ध अपनी है, कई संसार में कोई भी दो मनुष्य एक जैसे है ही नहीं, किन्हीं दो के चेहरे मिलते हैं, इतने अरबों लोग इस दुनिया में रहते हैं, किन्हीं दो के चेहरे मिलते हैं। तो हरेक इंसान अलग अलग है, हरेक के कर्म अपने हैं, प्राप्तियां अपनी है, किसी को कुछ प्राप्त है, उसको जो प्राप्त है वो हमें प्राप्त नहीं है, जो हमें प्राप्त है वो उसको प्राप्त नहीं है, पर हरेक को भगवान ने जरूर दिया कुछ ना कुछ है। तो जो भाग्य हमें मिला है उसे हम देखें, दूसरों से अपनी तुलना नहीं करें, और हम ये देखें कि कल हम क्या थे, आज हम कहाँ हैं, और कल मुझे अपने जीवन में कहाँ पहुंचना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। दूसरों को देखने की बजाय अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें तो ये ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। फिर जहां तक क्रोध की बात है तो गुस्सा भी हम सभी को आता है, कम ज्यादा गुस्सा हम सभी करते हैं, और जब गुस्से में होते हैं तो हम ऐसे शब्द बोलते हैं आपस में जो हमें नहीं कहने चाहिए, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। और इसलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव, कहने वाला भूल जाता है लेकिन सुनने वाला शायद जीवन भर नहीं भूल पाता है, और उसके कारण संबंधों में जो दूरी होती है, भले एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन मन से बहुत दूर। तो हमें अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना चाहिए, और गुस्सा सबसे ज्यादा तनाव पैदा करता है। जो परिस्थितियों में तनाव पैदा होता है उसमें गुस्सा सबसे ज्यादा तनाव पैदा करता है। तो हम एक तरीका अपना सकते हैं, मानो गुस्सा आता है तो किसी भी कारण से, अब कई कारण हो सकते हैं, मेरी बात नहीं मानी, या मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, या मेरा अपमान कर दिया, या झूठ बोल दिया, मुझे धोखा दे दिया, कुछ भी ऐसे कारण बन सकते हैं जब मुझे गुस्सा आता है। तो हम सोचे हम अपनी बात कहेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़े समय के बाद, एक दिन के बाद कहेंगे। अगर एक दिन धैर्य नहीं रख सकते, बहुत लंबा समय है, तो 10 मिनट बाद ही सही, लेकिन तुरंत नहीं कहना है। 10 मिनट के बाद कहेंगे, उस 10 मिनट में क्या फर्क होगा, उतने समय में आपको ये समझ में आ जाएगा कि सारी गलती उसकी नहीं है, मेरी भी गलती है, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, परमानेंट वो पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी लगता है उसकी गलती है, कहना ही चाहिए, तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है। वही बात अगर हम शांति से कहते हैं, थोड़े रिस्पेक्ट से कहते हैं, तो सामने वाला उसे रियलाइज करता है, स्वीकार करता है, होता है ऐसे नहीं, उसी समय गुस्से में बोलेंगे ना, गलती होगी तो भी नहीं मानेंगे, और ये सिद्ध करेंगे, और समस्या का कभी भी समाधान नहीं होगा, बल्कि बात और बिगड़ जाएगी। क्या कहेंगे, एक बार एक ऐसे ही पति पत्नी दोनों ही गुस्से वाले स्वभाव के थे। ऐसे होता है कई बार, एक गुस्से वाला होता है, दूसरा शांत होता है, तो बात इतनी नहीं बिगड़ती है, घर का माहौल ठीक बना रहता है। लेकिन अगर दोनों ही गुस्से वाले हों तो घर में बहुत अशांति, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में इतना झगड़ा, इतना क्लेश होता था। तो वो पति तो काम पर चले जाते थे और वो पत्नी बेचारी बहुत घर में दुखी रहती थी। तो एक दिन उसकी पड़ोसन आई, उसने कहा मैंने आज घर में कथा रखी है और आप कथा में आना। तो ऐसे वो कथा सुनने गई तो देखा एक गुरुजी, महात्मा पंडित जी जो भी थे, वो आए कथा करने के लिए, और उसने कथा सुनने के बाद अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ा उनसे बात की और बोला कि मेरी ये समस्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो बहन, मैं तुमको तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो मेरी बात मानोगी तभी मैं बताऊंगा। उसने कहा कि महात्मा जी, मुझे तो शांति चाहिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तो उन्होंने एक पानी की बोतल मंगाई और उसको दिया, कहा कि देखो ये आप ले जाओ, और जब आपके पति गुस्सा करेंगे इसमें से कुछ घूंट पानी अपने मुंह में रखना, पीना नहीं है पानी। आप पहले ही समझ गए सभी। हाँ, मैंने कहा पानी मुंह में रखना है, और वो जब तक, हाँ जब तक बोल रहे हैं तब तक वो पानी मुंह में ही रहेगा। अब वो समझ तो गई, अब लेकिन क्या करे, उन्होंने पहले से ही उनसे प्रतिज्ञा करवा ली कि जो कहेंगे वो करूंगी। तो वो पानी लेके गई घर में और यही हुआ ना, बात हुई, गुस्सा शुरू किया उन्होंने तो वो चुप, क्योंकि पानी मुंह में रखा था, बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। अब वो पति ने सोचा इसको क्या हो गया आज, ये शांत। तो और जोर जोर से बोला, क्योंकि वो भी समझ में नहीं आ रहा था कि शांत कैसे हो गई, आज तक तो कभी शांत थी नहीं। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली, तो उनको आश्चर्य हुआ कि आज क्या हुआ है। फिर दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, फिर भी वो शांत थी। फिर उनको लगा क्या बात है, आज भी नहीं बोल रही है। तो फिर ट्रायल करने लगे, थोड़ा देखें ट्राई करके कि ये सचमुच नहीं बोलती है। तो देखा जब 7-8 बार ऐसे किया और वो बिल्कुल शांत है, तो फिर उन्होंने पक्का समझ लिया कि इसने अपने आप को बदल लिया है, और अगर ये बदल गई है तो फिर उनका ध्यान अपने ऊपर गया कि मैं छोटी छोटी बातों में भी ज्यादा गुस्सा करता हूं, तो मुझे भी ध्यान रखना चाहिए, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो जब ध्यान देना शुरू किया तो उनका भी गुस्सा कम होना शुरू हुआ। और ऐसे भी होता है, जब दो जने नहीं बोलेंगे तो बात भी ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो कुछ दिनों में घर में शांति हुई। अब ये बहन तो यही चाहती थी, इतनी खुश हुई, वो गई उनके पास, पंडित जी के पास, और कहा कि मैं आपका सचमुच कैसे शुक्रिया करूं, आपने मेरे नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि वो पानी कोई सिद्ध पानी नहीं था, वो तो सिंपल पीने का पानी था, लेकिन आपको सिखाने के लिए था कि आप उस समय शांत रह जाओ जब आपके पति गुस्सा कर रहे हैं। और आपने देखा उसका परिणाम कितना अच्छा मिला। आप सदा ही ये विधि अपनाओ, आपका घर सदा ही स्वर्ग रहेगा। तो कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी ये कहना बहुत आसान है, हाँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यावहारिक जीवन में आते हैं, तो गुस्सा कोई करता है तो हम भी नहीं रह सकते बिना बोले, और हम उससे भी दुगना गुस्सा करते हैं, क्या करेंगे, शांत रह सकते हैं, नहीं रह सकते। जो समझते हैं कोई गुस्सा करे और हम शांत रह सकते हैं, वो हाथ उठाए, 50% भी नहीं है। हाँ, दोनों इम्पोर्टेंट है, अच्छा दोनों को दे दो। अच्छा देखो, हम अपने मास्टर हैं, हम जो चाहें चूज कर सकते हैं, और हमें पता है कि गुस्सा हमारे लिए इतना हानिकारक है। रियलाइजेशन जब होती है तब हम चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका, हम राजयोग मेडिटेशन का भी अपना सकते हैं। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हम अपने मन को क्या थॉट देते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ और शांति धाम की रहने वाली हूँ। तो मेरा ओरिजिनल स्वभाव शांति है, गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं है, गुस्सा तो कमजोरी है। तो जब हम ये दिन में 10 बार अपने आप को याद दिला दें तो हमें इतना जल्दी गुस्सा आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो भी हम आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ जितने भी भाई बहने जुड़े हुए हैं, लाखों भाई बहने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और सबका अनुभव है कि राजयोग का अभ्यास करने के बाद उनके गुस्से के स्तर में बहुत बहुत कमी आ गई। सबसे बड़ा परिवर्तन जो देखने में आता है वो यही देखने में आता है कि गुस्सा बहुत कम हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो उसे भी हम आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये हमारी लाइफ पर, हमारे मन पर हमारा कंट्रोल होने लगता है। फिर एक अंतिम फॉर्मूला, मैं सब बातें नहीं ले रही हूं, हम संबंधों में सब अनुभवी हैं, और जो भी नेगेटिव बातें हैं उनको हमें सकारात्मक बनाना है। एक लास्ट फॉर्मूला है तनाव मुक्त रहने का, वो है अवॉइड, ऑल्टर एंड एक्सेप्ट। जीवन में जो भी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि सब तो कंट्रोल में नहीं होती हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। मानो कोई हमारे परिवार का सदस्य हमारे साथ रहता है और उसका स्वभाव हमारे से मेल नहीं खाता है। आप उनको बहुत बार समझा चुके हैं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं समझ में आता है, वो अपने स्वभाव नहीं बदल पाते। और अगर उनको देखकर हमें बार बार टेंशन होता है या हमारी स्थिति पर असर आता है, तो हम उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लें कि ये जो हैं, जैसे हैं, इनको समझकर हमें चलना है, तो हमें तनाव नहीं होगा। जो भी हमारे साथ रहते हैं, फिर चाहे वो हमारे वर्क प्लेस पर हैं, चाहे वो हमारी फैमिली में हैं, वो जो हैं, जिस स्वभाव के हैं, उन्हें हम वैसे ही स्वीकार कर लें। परिवर्तन अपने आप को करें, उनको हम परिवर्तन ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरों की लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। या कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं। अचानक कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप हो गया, या आग लग गई, चोरी हो गई, वो हो गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आगे क्या करना है। जो हो चुका उसको नहीं सोचना, लेकिन उसका आगे के लिए क्या हल निकालना है वो हम देखें। तो स्वीकार करके चलने से तनाव कम होता है। फिर कुछ बातों को जीवन में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हमारा स्वयं का जीवन हमारे कंट्रोल में है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में बहुत ज्यादा ईगो है या मेरी सेंसिटिव नेचर है, मुझे बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है या मुझे जल्दी गुस्सा आता है, मुझे दूसरों से ज्यादा जेलसी होती है, अपनी कमी हम सब समझ सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। भले उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ज्ञान और योग के अभ्यास से हम अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकते हैं और वो हमें इसमें काफी मदद करता है और हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। तीसरी बात, अवॉइड करके चलना, यानी इस संसार में आज ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं क्योंकि जो भी संचार माध्यम है उन्होंने पूरे विश्व को एक गांव की तरह बना दिया है। संसार के दूसरे कोने में क्या हो रहा है वो मेरे ड्राइंग रूम में विद इन मिनट्स पहुंच जाता है। कई बार उनको सुनकर तनाव पैदा होता है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना दूर बैठे हम कुछ तो नहीं कर सकते हैं। तो या तो हम अवॉइड करें, यानी हम उन्हें सुने ही नहीं, और अगर सुनते हैं तो फिर उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना आए, यानी साक्षी होकर के उस बात को हम सुने। तो अवॉइड करके चले। आज की जो दुनिया की खबरें होती हैं वो ऐसे होता है, दुनिया की सबसे बुरी खबर मीडिया की सबसे अच्छी खबर होती है, ऐसा ही होता है। और आप जब उसे बार बार सुनते हैं तो क्या होता है, तनाव पैदा होता है। तो या तो सुने ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं जानकारी के लिए तो बिल्कुल साक्षी होकर के उसे हम सुने, और किसी की भी आपस की भी ऐसी वैसी बातों को सुनते हुए हम ध्यान न दें, तो इस तरह से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि परिस्थितियों के प्रति हम अपने सोचने के तरीके में परिवर्तन लाते हैं, नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचते हैं, उन्हें हम चैलेंजेस के रूप में लेते हैं, और उसके लिए प्रतिदिन हम राजयोग का अभ्यास करें, क्योंकि मन को सही दिशा में चलाने के लिए हमें अभ्यास चाहिए। और यदि कुछ समय हम रोज अपने आप को दें, प्रतिदिन वो समय यदि हम अपने आप को देते हैं, तो उस समय के साथ साथ हमारे मन में वो शक्ति आ जाएगी कि हम परिस्थिति में अपने मन को तुरंत परिवर्तन कर लें और हम तनाव मुक्त महसूस करें। तो इस तरह से हम स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जी पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यही समाप्त करती हूँ। ओम शांति।